It's a blessing to be with you again this morning.
आज की सुबह आपके साथ पुनः होना मेरे लिए एक आशीष की बात है.
God is faithful to us.
परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है.
Given us a new opportunity to study the Word of God together.
उसने हमें एक नया अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को साथ में पढ़ सकते हैं.
Now this is what I want to try to do today.
आज की सुबह मैं ये करना चाहूंगा आपके साथ.
I want to have one more class this morning on your relationship with God.
हम आज की सुबह परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है उस पर एक और कक्षा लेना चाहेंगे आपके साथ.
And then in our second hour, I want to give you a short exhortation again regarding your relationship with your family.
और फिर दूसरे घंटे में जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा आपका जो रिश्ता है आपके परिवार में उसके बारे में.
And then this afternoon we want to begin to study some basic doctrine again.
और आज के दोपहर हम फिर उसके बाद पुनः हम लोग साधारण बुनियादी सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना आरंभ करेंगे.
The preacher must have a holy character.
एक जो प्रचारक है उसके पास एक पवित्र चरित्र होना चाहिए.
True holiness begins in the heart.
सच्ची पवित्रता हृदय से शुरू होती है अंदर से.
And we develop that holiness in many places.
और वो पवित्रता हम कई स्थानों पे उसको बढ़ाते हैं.
We develop that holiness in the church.
वो हम कलीसिया में उसको करते हैं बढ़ते हुए देखते हैं.
As we have relationship one with another.
जब हमारा एक दूसरे के साथ संबंध होता है.
We develop that holiness in the family.
वो पवित्रता हम परिवार में बढ़ाते हैं.
As we have relationship with our spouse and with our children.
जब हम अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ संबंध में जीवन व्यतीत करते हैं.
We even develop that holiness out into the world.
और वो पवित्रता हम संसार में बाहर उनके मध्य में भी बढ़ाते हैं.
When we interact with lost people.
जब हम जो खोए हुए लोग हैं उनसे हम वार्तालाप करते
हैं. All of these places can help us grow in our character.
ये सारी बातें हमें जगह हमें हमारे चरित्र में बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं.
But the first place.
लेकिन सबसे पहली जगह
the foundational place
सबसे बुनियादी जगह
the most important place
सबसे महत्वपूर्ण जगह
where true holiness is truly developed
जहां पे सच्ची पवित्रता वास्तव में जिसकी वृद्धि होती है
is in your relationship with God
वो है परमेश्वर से आपके संबंध में
alone in the secret place
वो तभी होता है जब आप अकेले होते किसी एकांत की जगह में
now we can pray to God in every place
यद्यपि हम परमेश्वर से हर जगह बात कर सकते हैं
because God is in every place
क्योंकि परमेश्वर सब जगह है.
And Paul tells us to pray without ceasing.
और पौलुस हमसे ये भी कहता है कि बिना रुके हुए निरंतर लगातार
प्रार्थना करते रहो. So we need to go through life constantly praying to God.
तो इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए.
But in the first place,
लेकिन सबसे पहली जगह
and in a special way,
और विशेष तौर से
God is in secret.
परमेश्वर जो है गुप्त स्थानों में होता
and
है.
We should fellowship with God in secret.
और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए गुप्त स्थानों में.
So we talked first of all about the priority of communion with God.
जो सबसे पहले हमने बात की थी परमेश्वर से संगति की प्राथमिकता.
David said this one thing I seek.
और या दाऊद ने कहा था केवल एक चीज है जो मैं ढूंढना चाहता हूं
मांगता हूं. Jesus said one thing is necessary.
यीशु मसीह ने कहा एक बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण
है. Paul said this one thing I do.
पौलुस कहता है एक ही बात है जो मैं करता हूं.
You must be men and women of one thing.
तो हमें और आपको केवल एक ही बात एक ही चीज का व्यक्ति
होना है. Secondly, we talked about the place of prayer.
और फिर दूसरी बात हमने बात की प्रार्थना का स्थान.
Certainly in every place.
यद्यपि सही बात है कि हर जगह पे.
Especially in secret.
लेकिन विशेष तौर से हमें एकांत में हमें प्रार्थना करना चाहिए.
And then third, we talked about a desire for secret communion with God.
और फिर तीसरी बात हमने बात की थी कि हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर से गुप्त में संगति की.
We need to pray God would give us a desire for Him.
हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें उसके प्रति एक इच्छा दे दे.
And then number four, we talked about the discipline of secret communion.
और फिर चौथी बात हमने बात की थी परमेश्वर के साथ संगति के लिए अनुशासन की आवश्यकता उसके लिए
Sometimes we don't have the desire.
कभी कभी हमारे अंदर मनसा इच्छा नहीं होती है.
Our feelings go up and down.
हमारी भावनाएं ऊपर नीचे जाती हैं.
But we should have a holy discipline to seek God.
लेकिन हमारे अंदर पवित्र अनुशासन होना चाहिए कि हम परमेश्वर को ढूंढें.
We walk by faith and not by sight.
हम विश्वास के द्वारा चलते हैं ना कि अपने आंखों के द्वारा.
Not by emotion.
अपनी भावनाओं के द्वारा भी नहीं.
Not by our circumstances.
हमारी परिस्थितियों के अनुसार नहीं.
Not based on what other people do.
उस उन पे आधारित नहीं कि दूसरे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.
We must have a holy discipline.
हमारे अंदर एक पवित्र अनुशासन होना चाहिए
to seek after God.
ताकि हम परमेश्वर के पीछे जा
सकें. Then we talked about the nature of communion with God.
फिर हमने बात की थी परमेश्वर से संगति की के प्रक्रिया की.
It's to seek his face.
वो हमें उसके चेहरे को ढूंढना है.
And to see his face.
और उसके चेहरे को देखना है.
And the face means the presence of God and the person of God.
और जब भी चेहरा शब्द परमेश्वर का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का the face of God and the
person of God.
और परमेश्वर का व्यक्तित्व.
God is a person.
परमेश्वर एक जन है, एक व्यक्ति है.
But God is a spirit.
लेकिन परमेश्वर एक आत्मा भी है.
And those who worship him must worship him in spirit and truth.
और तो इसलिए जो उसकी आराधना करे उसे सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करे.
We cannot know God completely.
हम परमेश्वर को पूरी तरह से पूर्णता से नहीं जान सकते.
But we can know God truly.
लेकिन यद्यपि हम फिर भी हम परमेश्वर को सच्चाई से जान सकते हैं.
Revealed himself in his son.
और उसने अपने आप को अपने पुत्र में हमारे ऊपर प्रकाशित किया है.
Given us the spirit.
और उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा भी दी है.
And he has given us his word.
और उसने हमें अपना वचन भी दिया है.
So when we see him who he is,
और जब हम उसे देखते हैं कि वो कौन
है, see ourselves who we are,
और फिर हम देखते हैं कि हम कौन है,
it brings us low,
तो हम और नीचे की ओर झुक जाते हैं.
With humility,
नम्रता के साथ हम झुक जाते हैं.
And with dependency,
और फिर उसके ऊपर निर्भरता के साथ हम झुक जाते
हैं. And we worship him,
और फिर हम उसकी आराधना करते हैं.
So we talked about the content of prayer,
और हमने फिर बात की थी कि हमारी प्रार्थना में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए.
Worshiping God,
परमेश्वर की आराधना करना.
Interceding for his kingdom,
उसके राज के लिए विनती प्रार्थना करना.
Asking for his help,
उसकी मदद के लिए मांगना.
Seeking his pardon and cleansing,
उसकी क्षमा और शुद्धता को मांग लेना,
ढूंढना. These are the different aspects of prayer.
ये प्रार्थना के विभिन्न हिस्से हैं.
And I'm glad to hear that you sought to think about the attributes of God.
और मैं बहुत खुश हूं कि आपने परमेश्वर के गुणों को ढूंढने की कोशिश की थी कल.
So I want to give you some more homework.
तो इसलिए मैं आपको आज और कुछ गृह कार्य देना चाहता हूं.
You do that same assignment for the rest of your life.
और यह जो काम कल मैंने आपको दिया था, यह काम अपने आप जीवन भर, आपके जितने दिन बाकी तब तक वो काम करते रहिए.
Every day,
प्रतिदिन,
you ought to spend a few moments,
आपको कुछ क्षण व्यतीत करना चाहिए,
thinking about some aspect of God's nature,
आपको परमेश्वर की प्रवृत्ति के कुछ पहलू के बारे में समय व्यतीत करना
चाहिए, praising him for that,
और फिर उस प्रवृत्ति के लिए उसको उसकी स्तुति करिए,
thanking him for that,
उसको उसके गुणों के लिए उसका धन्यवाद कीजिए,
and thinking about what that means to you,
और फिर इसके बारे में सोचिए कि वो जो उसका गुण है उसका आपसे क्या मतलब है, क्या
है. I got up this morning,
आज की सुबह मैं उठा,
my heart was troubled,
मेरा हृदय दुखी था,
my heart was burdened,
मेरा हृदय बोझिल था,
but I had to go back again to God,
लेकिन मुझे वापस परमेश्वर के पास जाना था,
that he is sovereign,
कि वो हर चीज पे नियंत्रण में है,
that he is in control,
और उसके हाथ में सब कुछ है,
that he loves us,
और वो हमसे प्रेम करता है,
that he cares for us,
वो हमारी चिंता करता है,
that he has promised to meet our needs,
और उसने प्रतिज्ञा की वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा,
and even when we don't understand,
और जब हम नहीं समझते,
and even when there are difficulties in life,
और जब जीवन में समस्याएं होती हैं तब भी,
His love,
उसका प्रेम,
His faithfulness,
उसकी विश्वास योग्यता,
His compassion,
उसका दया,
His power,
उसकी सामर्थ,
His sovereignty,
उसके सार्वभौमिकता,
can minister to our hearts,
हमारे हृदयों के प्रति सेवकाई कर सकती है.
This is not something just to write in your book.
ये कोई ऐसी चीज नहीं है केवल जो आप अपनी किताबों में लिख
लीजिए. This is something to know in your heart.
ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपने हृदय में जान जाना है.
So this is the content of communion with God.
परमेश्वर के साथ संगति की सामग्री ये है.
Now this morning I want to mention three other things.
आज की सुबह मैं आपसे तीन और बातें करना
चाहता हूं. The power for communion with God.
परमेश्वर संगति के लिए सामर्थ.
The hindrances to communion with God.
परमेश्वर संगति के लिए बीच में रुकावट.
And the benefits of communion with God.
परमेश्वर संगति के फायदे.
We're talking about the most important relationship in your life.
तो आप इसको लिख लीजिए. हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते की जीवन में जो हो सकता है.
God wants us to have holy character.
चाहता है कि हम उसके साथ हमारा एक पवित्र चरित्र हो.
It begins in the heart.
वो पवित्र चरित्र हृदय में आरंभ होता है.
And it is developed in our relationship with God.
और वो बढ़ता है जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होता है.
And the first place,
और सबसे पहली जगह,
is in secret.
वो है गुप्त स्थान में जहाँ पे वो
But sometimes our hearts are cold.
लेकिन कभी कभी हमारे हृदय तो ठंडे
होते हैं. Sometimes we're weak.
और हम कभी कभी कमजोर
होते हैं. We are discouraged.
और हम थके, हम
निराश होते हैं. We have no strength.
और हमारे अंदर ताकत
नहीं होती. We have no heart. To pray.
Our
souls are dull.
हमारे प्राण तो थके हुए होते हैं.
But God has given us a helper.
लेकिन परमेश्वर ने हमको एक मददगार दिया है.
That we might worship Him.
ताकि हम उसकी आराधना कर सकें.
Through His Son.
उसके पुत्र के द्वारा.
By the power of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए भाइयों.
The power to commune with God.
परमेश्वर के साथ संगति करने की सामर्थ
comes by the ministry of the Holy Spirit.
वो आती पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा ही.
God is the object of our worship.
हमारे आराधना का जो लेने वाला है वो परमेश्वर है.
The Son is the mediator of our worship.
और पुत्र जो है हमारे आराधना का मध्यस्थ है.
And the Holy Spirit is the enabler or the helper in our worship.
लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमें आराधना करने के योग बनाता है, हमें मदद करता है.
Sometimes we don't know how to pray as we ought.
और हमें कभी कभी नहीं मालूम होता है कि हमें कैसे स्तुति करनी चाहिए, जिस तरह से हमें करना चाहिए.
Sometimes we have no heart to pray.
और कभी कभी हमारे अंदर हृदय मन ही नहीं करता कि हम प्रार्थना करें.
Sometimes we are discouraged in prayer.
और कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम हताश हो जाते हैं प्रार्थना में.
God has given us the Holy Spirit.
लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको पवित्र आत्मा दी है.
Now there are many ministries of the Holy Spirit in the life of the believer.
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की कई प्रकार की सेवकाई हैं.
Let me mention some of them.
मैं कुछ आपको समय बता देना चाहता हूं.
There is the assurance of the Spirit.
और पहली बात है पवित्र आत्मा का आश्वासन.
Or there is the witness of the Spirit.
और पवित्र आत्मा की गवाही.
Romans chapter 8.
रोमियों का 8वां अध्याय.
His Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God.
उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं.
After a man is a Christian,
एक व्यक्ति जब मसीही बन जाता है,
God does not leave him alone.
तो परमेश्वर उसको अकेले नहीं छोड़ देता.
He gives him a helper.
परमेश्वर उसको एक मददगार देता
है. And the Holy Spirit ministers in different ways.
और पवित्र आत्मा अलग-अलग तरीके से उसके जीवन में सेवकाई का काम करती है.
Now when a man is a converted,
और जब एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता
है, there is a ministry of the Spirit.
तो वहाँ पे पवित्र आत्मा की सेवकाई का काम हो रहा है.
There is the regeneration of the Spirit.
क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा का नया जन्म हो रहा है.
There is the indwelling of the Spirit.
और उसके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है.
There is the baptism of the Spirit.
और वहीं पे पवित्र आत्मा के द्वारा उसका बपतिस्मा हो रहा है.
There is the sealing of the Spirit.
और वहीं पे पवित्र आत्मा के द्वारा उस पे छाप भी लग रही
है. All this happens when a man is converted.
और ये सारी चीजें तब होती हैं जब एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है.
But after he is converted,
और जब उसका नया जन्म हो जाता है,
the Holy Spirit helps him.
और फिर पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है.
And this is an experience.
और ये एक अनुभव है.
An experience that can grow.
और ये अनुभव है जो बढ़ता चला जाता है.
He is our helper.
वो हमारा मददगार है.
And he does this.
Oh yes, ये करता है.
There is the witness of the Spirit.
ये पवित्र आत्मा की गवाही है, साक्षी है.
Romans 8.
रोमियों का 8वां अध्याय.
His Spirit bears witness with our spirit.
उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है.
And gives us assurance.
और हमें इस बात की आश्वासन देता है.
That we are the children of God.
कि हम परमेश्वर के संतान हैं.
And what does that produce?
और फिर क्या उत्पन्न होता है उससे?
Romans 14.
रोमियों का 14वां अध्याय.
Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा में होकर के धार्मिकता, प्रेम और आनंद.
The Holy Spirit gives us assurance.
पवित्र आत्मा हमें आश्वासन देता है.
That we are the children of God.
कि हम परमेश्वर के संतान हैं.
And He sends His Spirit into our heart.
और वो अपनी आत्मा हमारे हृदयों में भेजता
है. And we cry out, Abba Father.
और फिर हम पुकार के कहते हैं, हे पिता, हे अब्बा.
This is the witness of the Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की गवाही.
It gives us assurance.
ये हमें आश्वासन देता है.
Now a man may be truly converted.
और हो सकता है कोई व्यक्ति वास्तव रीति से
have full assurance.
हो सकता है कोई व्यक्ति वास्तविक रीति से हृदय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उसका पूरा आश्वासन नहीं होगा.
Truly converted.
एक व्यक्ति सच्ची तरह से मसीह बन चुका हो
and loses joy.
और लेकिन वो अपने आनंद को खो सकता है.
A man may be truly converted.
एक व्यक्ति सच्ची तरह से हृदय परिवर्तन हो सकता
है. And not have inward peace.
लेकिन उसके अंदर हो सकता है भीतरी आनंद शांति ना हो.
But the Holy Spirit.
लेकिन पवित्र आत्मा
His special work.
उसका विशेष काम ये है.
Is to speak to our hearts.
कि वो हमारे हृदयों से बात करता है.
And take the word of God.
वो परमेश्वर का वचन लेता है.
And tell us we are the children of God.
और हमको बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं.
This is a wonderful ministry of the Holy Spirit.
ये पवित्र आत्मा की एक बहुत ही अद्भुत सेवकाई है.
There's another ministry of the Spirit.
पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई.
There is the comfort of the Spirit.
वो है पवित्र आत्मा की संतावना.
Write this verse down.
पद को आप लिख लीजिए.
Acts chapter 9.
पेतो काम उसका नवा अध्याय.
Verse 31.
और उसका 31वां पद.
What does that verse say?
पेतो काम 9:31.
It's talking about the early church.
ये क्या कहता है पद? यहाँ पे आरंभिक कलीसिया की बात की
जा रही है. In the midst of persecution.
यहाँ पे विरोधों के मध्य में.
It says they were filled with joy.
कहा जाता है कि वे लोग आनंद से भरे हुए थे जब उनके पास सताव चल रहा
है. They continued in two things.
और वो लोग दो चीज करने में निरंतर बने रहे.
In the fear of God.
परमेश्वर के भय में.
And in the comfort of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा के संतावना आश्वासन में.
What is the comfort of the Holy Spirit?
पवित्र आत्मा के संतावना क्या है?
Philippians 2.
Philippians 2.
It is the fellowship of the Spirit.
वो है पवित्र आत्मा के साथ संगति.
When the Holy Spirit comes near to us.
और जब पवित्र आत्मा हमारे निकट आता है.
Especially in the midst of difficulties.
विशेष तौर से जब हमारे पास मुश्किल होती है.
And especially in the midst of confusion.
और विशेष तौर से जब हम भ्रम में होते हैं, गड़बड़ी में होते हैं उस समय.
And even in the midst of persecution.
और जब हमारे पास सताव आ रहा था उस समय भी.
When we don't understand.
जब हम नहीं समझते.
When we cannot see God's purpose.
जब हम परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं समझ पाते
हैं. The Holy Spirit comes.
तब पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आता
है. And speaks peace to our heart.
और हमारे हृदय से शांति की बात करता है.
And comfort to our soul.
हमारे हृदयों को संतावना और प्रोत्साहन देता है.
This is an experience.
ये एक अनुभव है.
I knew it this morning.
मुझे आज की सुबह मालूम था ये.
Got up. Frustrated.
मैं सुबह उठा बहुत ही हताश.
Worried.
और दुखी परेशान.
Concerned about my wife.
अपनी पत्नी के लिए चिंतित था.
But I began to pray.
लेकिन मैंने प्रार्थना करना आरंभ
कर दिया. Lord, you're sovereign.
मैंने कहा प्रभु आप.
You're in control.
सार्वभौमिक हैं आप नियंत्रण में हैं.
You love us.
आप हमसे प्रेम करते हैं.
And the Holy Spirit came down.
और पवित्र आत्मा नीचे आया.
And comforted my heart.
और मेरे हृदय को उसने प्रोत्साहित किया, आश्वासन दिया.
This is the fellowship of the Holy Spirit.
और ये है पवित्र आत्मा की संगति.
In the midst of difficulties,
मुश्किलों के समय में,
He comes along beside us.
हमारे साथ में आता है.
That's what Jesus says.
यही यीशु मसीह ने कहा
था. And He is an encourager.
और वो हमको उत्साहित करता है.
He's a comfort.
वो हमें संतावना देता है.
He stands with us.
वो हमारे साथ खड़ा होता है.
He speaks to us.
वो हमसे बात करता है.
And He gives us true comfort.
और वो हमें सच्चा संतावना देता है.
There's another ministry of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई.
There's the teaching ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की शिक्षा की सेवकाई.
John chapter 16.
यूहन्ना उसका 16 अध्याय.
When He comes.
जब वो आता है.
The Spirit of truth.
सच्चाई की आत्मा.
He will lead you into all truth.
तो फिर वो भी हमें सारे सत्य सच
Because He will take the things of mine and reveal it to you.
क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर के तुम पर प्रकाशित कर देगा.
And so Paul says in Ephesians 1.
तो इसलिए पौलुस इफिसियों उसके पहले अध्याय
में कहता है. I pray that the eyes of your heart would be enlightened.
मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय की आंखें जो हैं प्रकाशित हो जाएं.
And He would give you a spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him.
और वो तुम्हें एक प्रकाश की आत्मा देगा ताकि तुम्हें उसका ज्ञान प्राप्त हो सके.
This is a ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई.
When you read the Bible.
जब आप वचन को पढ़ते हैं.
When you study the Bible.
जब आप वचन का अध्ययन करते हैं.
The Holy Spirit can illuminate your mind.
पवित्र आत्मा जो आपके मस्तिष्क को प्रकाशित मान कर सकता है.
And He can enlarge your heart.
और आपके हृदयों को बड़ा कर सकता है.
And He can increase your understanding.
वो आपकी समझ को बढ़ा सकता है.
And He can open this book.
और आप वो इस पुस्तक को खोल सकता है वो.
And all preachers especially.
और खासतौर से जो लोग प्रचारक लोग हैं.
When they are studying,
जब वो लोग अध्ययन कर रहे हैं.
When they are preparing their messages,
और जब वो लोग अपने संदेश की तैयारी कर रहे हैं.
They need to be in a spirit of prayer.
उन्हें प्रार्थना की आत्मा में रहना चाहिए.
Lord, open your word.
हे प्रभु अपने वचन को खोल दीजिए.
And show me wonderful things from your law.
और अपने व्यवस्था में से मुझे अद्भुत बातें दिखाइए.
This is the ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई.
And there's another ministry of the Spirit.
और पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई है.
It is the sanctifying work of the Spirit.
वो है पवित्र आत्मा का शुद्ध करने का काम, पवित्र करने का काम.
When we seek to mortify sin,
जब हम अपने पाप को मारने का प्रयास करते हैं,
and when we are renewed into the image of Christ,
जब हम मसीह के स्वरूप में बनते चले जाते हैं,
when we put off the old man,
जब हम अपना पुराना मनुष्यत्व हटा
देते हैं, put on the new man,
और नया मनुष्यत्व चढ़ा लेते हैं,
it's a process of growth,
तो ये एक प्रक्रिया है वृद्धि की,
it takes time,
इसमें समय लगता है,
but it's not by our own strength,
लेकिन ये हमारी सामर्थ्य से नहीं होता है,
it's by the power of God,
ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है. है.
Romans chapter 8.
रोमियों का आठवां अध्याय.
If you by the Spirit put to death the deeds of the body, you will live.
अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मृतक कर दोगे तब तुम उसके द्वारा जीवित रहोगे.
Galatians chapter 5.
गलतियों का पांचवां अध्याय.
Walk by the Spirit.
आत्मा के द्वारा चलो.
And what will be the result?
और फिर उसका परिणाम क्या होगा?
You will not fulfill the desires of the flesh.
तो तुम जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनको पूरा नहीं करोगे.
Now we're just surveying this briefly.
हम इसको जल्दी से इसका सर्वेक्षण कर रहे
हैं. I want to get to my main point.
क्योंकि मैं अपने मुख्य विषय पे पहुंचना
चाहता हूं. But I want you to understand this.
मैं ये चाहता हूं कि आप समझ जाएं.
God has given us a helper.
कि परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया है.
To assure us.
हमको आश्वासित करने के लिए.
When we doubt.
जब हम शक करते हैं.
To comfort us.
हमें संतावना देने के
When we are in difficulty.
जब हम मुश्किलों में होते हैं.
To teach us.
हमें सिखाने के लिए.
When we need understanding.
जब हमें समझ की जरूरत होती है.
To help us.
हमें मदद करने के लिए.
When we fight against
जब हम पाप के विरोध में लड़ते हैं.
This is the ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई हमारे जीवन में.
But listen carefully.
पर लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
There's another ministry of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई है.
All Christians are to walk in the Spirit.
सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा में होकर के चलना चाहिए.
All Christians are to be led by the Spirit.
सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा उनका नेतृत्व होना चाहिए.
When the Bible talks about walking in the Spirit,
जब बाइबल बात करती है पवित्र आत्मा में चलने की बात.
When it talks about being led by the Spirit,
जब बाइबल बात करती है प्रार्थना में अगुवाई किए जाने की.
In Romans chapter 8,
रोमियों उसके आठवें अध्याय में.
And in Galatians chapter 5,
और गलतियों उसके पांचवें अध्याय में.
What is the context?
और संदर्भ क्या है क्या
the
बात हो रही है.
Context is sanctification.
जो संदर्भ है वहां पे वो पवित्रीकरण की
the
बात हो रही है.
Context is Christian growth.
जो संदर्भ है मसीही वृद्धि की बात हो रही है.
Putting to death sin.
पाप को मृत्यु दे देना.
And being renewed in the image of Christ.
और मसीही के समानता में नए बनते चले जाना उसके स्वरूप में.
All Christians should experience that.
सारे मसीहों को इस बात का अनुभव अवश्य होना चाहिए.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
There's another ministry of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की एक और सेवकाई.
And it's extraordinary.
और वो एक विशेष से बढ़ करके हैं.
And not all Christians experience it.
और सारे विश्वासी लोग नहीं उसको अनुभव करते हैं.
And Paul calls it the filling of the Spirit.
और पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से भरे जाना.
And as you look in the book of Ephesians,
और जब आप इफिसियों की पुस्तक में पढ़ेंगे,
chapter 5,
और पांचवें अध्याय में,
and as you look in the book of Acts,
और जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे,
chapter 2,
दूसरे अध्याय में,
chapter 4,
तो चौथे अध्याय में,
chapter 7,
सातवें अध्याय में,
chapter 8,
आठवें अध्याय में,
and chapter 13,
और तेरहवें अध्याय में,
you see again and again this repeated experience.
और यहाँ पे आप देखेंगे बार बार एक जो दोहराता एक अनुभव.
There is a sudden.
एक अचानक से.
There is an immediate.
और तुरंत.
There is an extraordinary.
एक अति विशेष.
Influence of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का प्रभाव.
At certain times in the life of the believer.
विश्वासी के जीवन में कभी कभी.
For a special purpose.
एक विशेष उद्देश्य के लिए.
And for a special ministry.
और एक विशेष सेवकाई के लिए.
And if you study those passages in detail.
और अगर आप उन स्थलों को ध्यान से पढ़ेंगे.
What is the immediate result of the filling of the Spirit?
पवित्र आत्मा से भरे जाने का तुरंत प्रभाव क्या हुआ.
In Ephesians 5,
इफिसियों के पांचवें अध्याय में,
Acts 2,
और प्रेरितों के काम 2 में,
और
चार,
and Acts 7,
सात,
and Acts 8,
आठ,
and in Acts 13,
तेरा,
when they are filled with the Spirit,
जब वो लोग आत्मा से भर गए,
it is a fresh, spontaneous, immediate influence.
एक ताजा अपने आप तुरंत परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव होता है.
And at that moment,
और उस समय
something happened.
कुछ होता है.
What is the result?
उसका परिणाम क्या होता है.
Speech.
वचन.
They open their mouth.
वो लोग अपना मुंह खोलते हैं.
And what is the result?
और उसका परिणाम क्या होता है.
An enlargement of mind.
मस्तिष्क फैल जाता है.
A boldness of heart.
और हृदय में एक साहस आता है.
An expansion of thought.
और हमारे विचार बढ़ जाते हैं.
A fresh utterance of the mouth.
और एक ताजा आवाज होती है.
And an authority in one's person.
और एक व्यक्ति के जीवन में एक अधिकार होता है.
There is a filling of the Spirit.
वो है पवित्र आत्मा का भर जाना.
And it influences a man in an extraordinary way.
और वो एक व्यक्ति को एक नए तरीके से प्रभावित करता है.
And affects his mind.
उसके मस्तिष्क पे असर
डालता
है. Affects
his heart.
उसके हृदय पे असर डालता है.
Affects his mouth.
उसके मुख पे असर डालता है.
And affects his person.
और उसके व्यक्तित्व पे असर डालता है.
It enlarges his mind.
उसके मस्तिष्क को बढ़ाता है.
It emboldens his heart.
उसके हृदय को मजबूत करता है.
It loosens his tongue.
उसके टांग उसके जबान को खोल देता है.
And it gives him an authority in his presence.
और उसके परमेश्वर की उपस्थिति में उसको एक अधिकार देता है.
Now listen carefully.
और ध्यान से इस बात को.
In two places.
दो जगहों.
Is that influence especially evident?
विशेष तौर से वो अनुभव वो प्रभाव दिखाई देता है.
When we speak to God,
जब हम परमेश्वर से बात करते हैं,
and when we speak to man,
जब हम लोगों से बात करते हैं,
this is the power for secret communion with God.
ये है परमेश्वर के साथ संगति की सामर्थ गुप्त में.
Look in the book of Ephesians,
उफिसियों की पत्री में देखिए,
and chapter 6,
और छठा अध्याय,
and verse what?
10.
That's close, no going down. About 18. Praying at all times.
Oh, 18.
18. Look at verse 18.
18 पद को देखिए आप यहाँ पे.
What does Paul say?
Paulus क्या कह रहा है यहाँ पे?
With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit.
प्रत्येक विनती और निवेदन के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहो.
And most believe he's not talking about our human spirit. He's talking about the influence and the power of the Holy Spirit.
और ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं ये केवल व्यक्ति विशेष की आत्मा के बारे में नहीं बात कर रहे लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ की बात कर रहे हैं.
At all times,
हर समय,
with the help of the Spirit,
पवित्र आत्मा की मदद से,
under the influence of the Spirit,
पवित्र आत्मा के प्रभाव में,
by the power of the Spirit,
आत्मा के सामर्थ में,
this is the power for communion with God.
ये है परमेश्वर के साथ संगति की सामर्थ.
This is a ministry of the Holy Spirit.
ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई.
When we're praying,
जब हम प्रार्थना कर रहे
हैं, sometimes our heart is dead.
कभी कभी हमारा हृदय मरे हुए होते हैं.
Or it's dull.
और हमारे शरीर हम
थके हुए sluggish.
या फिर हम थके हुए होते हैं.
And all of a sudden,
लेकिन अचानक से,
the Spirit of God comes.
परमेश्वर का आत्मा आता है.
And our mind is illuminated.
और हमारे मस्तिष्क प्रकाशित.
And our heart is emboldened.
और हमारे हृदय दृढ़ हो जाते हैं.
And our confidence is increased.
और हमारा भरोसा बढ़ जाता है.
And our mouth has utterance.
और हमारे मुख में आवाज होती है.
And like water coming out of a faucet.
और जैसे एक नल से पानी गिरता है.
A man begins to pray.
एक आदमी प्रार्थना करने लगता है.
With authority.
अधिकार के साथ.
With confidence.
निश्चयता के साथ.
With boldness.
दृढ़ता के साथ.
With assurance.
निश्चयता के साथ.
Look in the book of Jude. Jude.
यहूदा की पत्री में देखिए.
We're talking about the power to pray.
हम प्रार्थना की सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं. प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य की बात कर रहे हैं.
Verse 20.
20 पद.
Beloved, build yourselves up on your most holy faith.
अपने आप को पवित्र विश्वास में गढ़ कर.
Praying in the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो.
Keep yourselves in the love of God.
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो.
Waiting anxiously for the mercy of God through Christ.
और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता के साथ मसीह यीशु की दया की बाट जोते रहो.
Now there's one command here.
यहाँ पे एक आज्ञा है.
Verse 21.
21 पद.
Keep yourselves in the love of God.
अपने आप को यीशु मसीह की दया में बनाए रखो.
Now God loves us at all times.
परमेश्वर हमको हमेशा प्रेम करता है हमसे.
Romans 8.
रोमियो 8.
Nothing can separate us from the love of God.
कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर
सकती. But sometimes we don't experience an assurance of that love.
लेकिन कभी कभी उस प्रेम के आश्वासन को हम अनुभव नहीं करते हैं.
And Jude is telling us this.
लेकिन यहूदा हमको ये कह रहा है.
He's not saying you must keep yourself saved.
यहूदा ये कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को बचा करके रखना है अपने नए जन्म के अनुभव को.
But he's saying you must keep yourself in a felt assurance of the love of God.
लेकिन तुमको अपने आप को परमेश्वर के जो एहसास किया गया अनुभव में बना करके रखना है.
A sense of God's love for you.
परमेश्वर के प्रेम के अनुभव को तुम्हारे लिए.
And a heart expression of your love for him.
और आपके हृदय का अभिव्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के प्रति.
How do you do that?
कैसे आप करते हैं ये?
Three ways.
तीन तरीके हैं.
Number one.
पहली बात
build yourself up on your most holy faith
अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ करके बना
what is the holy faith
पवित्र विश्वास क्या है
that is objective truth
वो है एक सत्य या तथ्य
that is the revelation of god
वो है परमेश्वर का प्रकाशन
and paul jude says this
और यहां पे यहूदा क्या कहता है
you're to constantly be building up yourself
कि तुम्हें अपने आप को निरंतर बनाते जाना है
Live in this book.
इस पुस्तक के अनुसार जियो.
Read this book.
इस पुस्तक को पढ़ो.
This is the promise of God.
यह है परमेश्वर की
प्रतिज्ञा. This is where God speaks to our heart.
इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदयों से बात
करता है. How can we keep ourselves in the love of God?
कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रख सकते
हैं? By living in this book.
इस पुस्तक में जीने के
द्वारा. Number two.
दूसरी बात.
By praying in the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा.
What does this mean?
इसका मतलब क्या हुआ?
It means the power and influence of the Holy Spirit helping us to pray.
इसका मतलब है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसका प्रभाव जो हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है.
It gives the thoughts to our mind.
वो हमारे मस्तिष्क को विचार देता है.
It gives the confidence to our heart.
हमारे हृदयों को आश्वासन.
It gives the words to our mouth.
हमारे मुंह को शब्द देता है.
And it gives us understanding of God's promises.
और हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की समझ देता है.
It is to be picked up by the Holy Spirit.
ये पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया जाना
It is to be carried along.
और इसको उठा करके वो लेकर के
जाए. It is to be helped by the Spirit.
परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद होनी चाहिए.
And when a man is filled with the Spirit in prayer.
और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाता है
प्रार्थना में. He's drawn into the presence of God.
वो परमेश्वर की उपस्थिति में खींचता है.
And his mind is enlarged.
और उसका मस्तिष्क खुल जाता है.
And the promises of God.
और परमेश्वर की प्रतिज्ञा.
And the nature of God.
और परमेश्वर का प्रकार के
And the truth of God is enlarged in his understanding.
उसके समझ में बड़ी हो जाती है.
And his heart has a fresh confidence.
और उसके हृदय में एक नया आश्वासन होता है.
And his mouth has utterance.
और उसके मुख में आवाज होती है.
And he's praying under the influence of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर प्रार्थना करता है.
Now many times when I'm praying,
और बहुत कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूँ.
I'm dragging along.
मैं घसीटता जा रहा हूँ.
Our heart can be sluggish.
हमारे हृदय थके हुए हो सकते हैं.
And the soul can be dull.
और हमारे प्राण थके हुए हो सकते हैं.
But we pray in faith.
लेकिन हम विश्वास से प्रार्थना
करते हैं. We don't pray according to feeling.
हम भावनाओं के अनुसार प्रार्थना नहीं करते.
We don't pray according to emotion.
हम अपने जो हम सोच रहे हैं.
We don't pray according to our circumstance.
अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं प्रार्थना
करते. We come to God in prayer.
हम प्रार्थना में होकर के परमेश्वर
के पास. Sometimes I'm trying to pray.
और कभी-कभी हम प्रार्थना करने का प्रयास
करते हैं. And my mind is wandering.
लेकिन मेरा दिमाग इधर-उधर.
And my thoughts are divided.
और मेरे विचार बटे हुए हैं.
And my heart is sluggish.
और मेरा हृदय थका हुआ है.
But other times,
लेकिन कभी कभी
he comes,
वो आता है,
and he picks you up,
और तो हमको उठाता है,
and he carries you along,
और हमको लेकर ही चलता है,
and he enables you to pray,
और वो आपको इस लायक करता है कि आप प्रार्थना कर सकें,
and you have what the old Puritans called access,
और
access,
और पुराने जो एक लोग होते थे जिनको प्योरिटन्स कहते थे वो ये कहते थे इसको परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता
एंड व्हेन दैट हैपेंस
और जब वो होता है
यू नीड टू स्टे देयर
तो आपको वहां रहने की आवश्यकता होती है
एंड एवरीथिंग गॉड ब्रिंग्स टू योर माइंड
और सब कुछ जो परमेश्वर आपके मस्तिष्क में लेकर के आता है
एंड एवरी बर्डन इन योर हार्ट
और आपके हृदय में जो भी बोझ है
एट दैट टाइम
उस समय
व्हेन गॉड ड्रॉज नियर
जब परमेश्वर निकट आता
है व्हेन ही गिव्स यू एक्सेस
जब परमेश्वर आपको
रास्ता देता है व्हेन ही गिव्स यू अटरेंस
जब परमेश्वर आपको
वचन देता है व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड
जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के भरे जाने के प्रभाव के अंदर होते हैं
दैट्स व्हेन यू नीड टू प्रे इन अर्नेस्ट
तब आपको गंभीरता के साथ सत्यनिष्ठा के साथ प्रार्थना करने की जरूरत होती है
A famous missionary in America.
एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु का सेवक अमेरिका
David Brainerd, you know that name, right?
David Brainerd.
David was a godly young man.
वो एक ईश्वर भक्त जवान व्यक्ति
था. He was dead when he was 29.
जब वो 29 साल का था तो उसकी मृत्यु हो गई.
You need to read his diary.
आपको उसके जो डायरी है उसको पढ़ने की
जरूरत है. It's had a tremendous influence on my life.
उस मेरे जीवन पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था.
And Brainerd had many experiences with God.
और ब्रेनर्ड के पास बहुत अनुभव थे परमेश्वर के साथ.
And once in his entry he says this.
और एक बार वो अपने लेख में ये कहता है.
I began to pray early in the morning.
मैंने सुबह उठकर के प्रार्थना करना
शुरू किया. And my heart was dull.
और मेरा हृदय थका हुआ था.
I continued until noon.
मैं दोपहर तक प्रार्थना करता रहा.
And I had no help.
और मेरे पास कोई मदद नहीं थी.
I prayed into the afternoon.
और मैं दोपहर तक प्रार्थना करता
रहा. And my soul was sluggish.
और मेरा हृदय फिर भी थका हुआ था.
But he said at night time.
फिर वो कहता है कि रात के समय तक जब मैं प्रार्थना कर रहा
था. About 8 o'clock.
लगभग 8 बजे.
God came.
परमेश्वर आया.
Now most men would have given up long before then.
ज्यादातर हम हमें से आप ज्यादातर लोगों ने बहुत पहले ही हम लोगों ने बंद कर दिया था प्रार्थना करना.
But Brainerd prayed in faith.
लेकिन ब्रेनर्ड ने विश्वास में प्रार्थना किया.
My question to you is this.
मेरा आपसे ये प्रश्न है.
Have you known that experience?
क्या आपने कभी इस अनुभव को जाना
है? Have you had that help?
क्या आपको कभी ये मदद मिली
है? Have you had that strength?
क्या आपको कभी ये सामर्थ्य मिली
है? Have you had that enablement?
क्या आपको ये आपको इस तरह का लायक बनाया गया कभी?
We all can testify to dullness of soul.
हम सब कह सकते हैं कि हमारे हृदय थके हुए होते हैं.
The wandering mind.
कि हमारा दिमाग इधर-उधर जाता है.
The sluggish heart.
और हृदय जो कि हल्का चल रहा है.
The distracted thoughts.
और हमारे बटे हुए दिमाग.
But hear me, brethren. We need to pray for the help of the Holy Spirit to strengthen us when we speak to God and strengthen us when we speak to man. Have you known that experience when you were praying to God or when you were preaching to men or when you're speaking to a friend or when you're witnessing to a lost person,
या किसी खोए व्यक्ति से आप गवाही
दे, all of a sudden,
एकदम से,
your mind is clear,
आपका मस्तिष्क साफ,
your heart becomes bolder,
आपका हृदय और साहसी,
the words come out of your mouth,
आपके मुंह से शब्द निकलने,
they jump one over another,
और वो आप एक के बाद एक उसे बात कर सकते हैं,
and you have the help of God,
क्योंकि आपके पास परमेश्वर की मदद है,
and you know it,
और आप जानते,
and they know it,
और वो जानते,
and it's like you're standing outside of yourself.
इस तरह से मानो कि अपने शरीर से बाहर खड़े हैं
लिस्निंग टू योरसेल्फ
आप स्वयं को सुन रहे हैं
एंड वॉचिंग योरसेल्फ
अपने आप को देख रहे हैं
व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड
जब मैं 20 साल का था
I've been a Christian for 6 months.
मैं 6 महीने से विश्वासी था.
I had never spoken publicly in my life.
मैंने कभी लोग सामने खड़े होकर बोला नहीं था.
I could hardly put together 2 or 3 clear sentences.
मैं मुश्किल से 2 या 3 वाक्य साफ तरीके से बोल सकता था.
But I was asked to give my testimony at a large crusade.
मुझसे कहा गया कि एक बहुत बड़ी सभा में अपनी
I told you this story before.
मैंने आपको ये कहानी पहले बताई है.
The famous American preacher Billy Graham came to town.
मेरे शहर में जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक हैं बिली ग्राहम वो मेरे शहर आए थे.
And he had a big crusade in the stadium.
और एक बड़े मैदान में एक बहुत बड़ी सभा उन्होंने
आयोजित की थी. There were 60,000 or 70,000 people there.
वहाँ पे लगभग 60,000 या 70,000 लोग थे.
And there were TV cameras.
वहाँ पे टीवी के कैमरा थे.
And he had asked me to give my testimony.
और उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी गवाही दूँ.
And I'd never spoken in my life.
मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं बोला था.
And when I walked to that stadium,
जब मैं उस मैदान में गया,
it was the same stadium I played football in.
और वही मैदान था जहाँ पे मैं फुटबॉल खेला करता था.
But now I was having a new experience.
लेकिन अब मेरे सामने एक नया अनुभव हो रहा था.
And when they called me to stand up to speak,
जब उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं खड़ा होकर
बोलूं, I was like this.
मैं इस तरह से था.
And I got over here to speak.
और फिर मैं गया बोलने के लिए.
And I saw all these people.
जब मैंने इन सारे लोगों को देखा.
And I saw the TV cameras.
और मैं देखा टीवी के कैमरा थे.
And something happened to me.
और फिर कुछ हुआ मेरे साथ.
For the first time in my Christian life.
अब मेरे मसीही जीवन पहली बार.
God came down upon me.
परमेश्वर मेरे ऊपर आया.
And I didn't know what was happening.
मुझे नहीं मालूम था क्या हो रहा था.
And I began to speak.
और फिर मैं बोलने लगा.
And the words began to come out.
और मेरे मुंह से शब्द बाहर निकलने
लगे. It was like I was standing over here looking.
ये इस तरह से मानो कि जैसे मैं अपने शरीर के बाहर खड़े होकर के देख रहा हूँ.
And I was supposed to speak for 3 minutes.
और मुझे 3 मिनट ले बोलना था.
And I spoke for 15 minutes.
लेकिन मैं 15 मिनट तक बोला.
And I was using all the TV time.
और मैं सारे टीवी का समय इस्तेमाल कर रहा था.
And they began to play the piano.
और फिर वो लोग पियानो बजाने लगे.
They wanted me to sit down.
वो चाहते थे कि मैं बैठ जाऊँ.
But I kept speaking.
लेकिन मैं बोलता रहा.
Because I was under the influence of the Spirit of God.
क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव के भीतर था.
I didn't know what had happened to me.
मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो गया मुझे.
I was a young Christian.
मैं एक जवान मसीही
था. Been a Christian 6 months.
मैं 6 महीने से बस.
I'd never had that experience before.
मेरे को पहले कभी वो अनुभव नहीं हुआ.
And then when I finished.
और फिर जब मैंने.
And I sat down by Billy Graham.
और जब मैं बैठ गया बिली ग्राहम के पास.
A second time.
दूसरी बार.
The Spirit of God fell upon me.
परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आया.
And I had joy.
मेरे पास आनंद था.
And I sensed the presence of God.
और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया.
And I began to weep.
और मैं रोने लगा.
And that was 43 years ago.
और वो 43 साल पहले की बात है.
And my life was changed that day.
और मेरा जीवन उस दिन बदल गया.
I have a DVD of that.
मेरे पास उसकी अभी भी DVD है उस घटना की.
And on October 25th, October 25th.
25 अक्टूबर.
At 3:00 in the afternoon.
3 बजे दोपहर में.
Every year.
प्रतिदिन.
I pull that DVD out.
मैं वो DVD बाहर निकालता हूँ.
And I play it.
और मैं उसको बजाता हूँ.
And I look at that young man.
और मैं उस जवान व्यक्ति को देखता हूँ.
Standing before all those people.
उन सारे लोग सामने खड़े हुए हैं.
And I say, this is the grace of God.
फिर मैं कहता हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है.
And many times since then.
और बहुत बार उसके बाद से.
God has come.
परमेश्वर ने आया है.
In prayer.
प्रार्थना में.
And in speaking.
और बोलने के समय.
And he has helped.
और उसने मेरी सहायता की है.
Brethren, we need the power of the Spirit of God.
परमेश्वर हमें परमेश्वर भाइयों हमें परमेश्वर की आत्मा की मदद चाहिए.
We pray in faith.
हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं.
We ask for his help.
लेकिन हम उसकी मदद को मांगते हैं.
And when he comes.
और जब वो आता है.
Don't leave.
मत जाइए.
Don't eat.
मत खाइए.
Don't do anything else.
कुछ और मत करिए.
Pray about all you can think about.
जो कुछ आप सोच सकते हैं उसके बारे में प्रार्थना कीजिए.
Because you have access.
क्योंकि आपके पास एक रास्ता है.
And when you have access.
और जब आपके पास मार्ग है.
You want to stay there.
तो आप वहीं रहना चाहेंगे.
And pray all you can think of.
और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसके बारे में प्रार्थना करिए.
That's the power of the Holy Spirit.
ये है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ.
And that's what we need in prayer.
और ये हमें चाहिए प्रार्थना में.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
Even when he doesn't come.
चाहे वो आए या ना आए.
We go to pray in faith.
हम फिर भी विश्वास में होकर के प्रार्थना करते हैं.
Most of the time.
ज्यादातर.
I'm praying by faith and not by feeling.
मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहा हूँ ना कि अनुभव के द्वारा.
A little child lives according to feelings.
एक जो छोटा बालक होता है वो अनुभव के अनुसार जीवित रहता है.
A mature man lives according to his responsibilities.
लेकिन एक जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार.
And as we grow older in Christ.
और जब हम मसीह में वृद्ध होते जाते हैं.
We are to live according to principle, the word of God.
तो हमें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार फिर जीवन व्यतीत करना
चाहिए. Not according to feeling.
अनुभव के अनुसार नहीं.
Sometimes I can pray for a minute and it seems like an hour.
कभी कभी मैं केवल एक मिनट प्रार्थना करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने एक घंटे प्रार्थना कर ली है.
But other times I can pray for an hour and it seems like a minute.
लेकिन कभी कभी मैं एक घंटे प्रार्थना करता हूँ ऐसा लगता है कि मैंने केवल एक मिनट प्रार्थना की है.
What is the difference?
फर्क क्या है?
You remember Peter?
आप जानते हैं पत्रस को?
A little girl spoke to him.
एक छोटी लड़की ने उसे बात की.
You were with him.
तुम उसके साथ थे.
Three times he denied Christ.
और तीन बार उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया.
He was scared of a little girl.
वो एक छोटी लड़की से डरा हुआ था.
40 days later.
40 दिन के बाद.
He stood before the whole world.
वो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया.
And said, "You crucified him."
उसने कहा कि तुमने इसे क्रूसिफाई.
You put him to death.
तुमने उसे मृत्यु दी.
And God made him Lord in Christ.
और परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह बनाया है.
What was the difference?
क्या फर्क हो गया था उन दो समय में?
The ministry of the Spirit of God.
परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सेवकाई.
And in prayer.
और प्रार्थना में.
And in preaching.
और प्रचार में.
That is an extraordinary influence.
ये है अति विशेष प्रभाव.
So seek His help.
तो उसकी मदद को ढूंढिए.
If you know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those that ask?
अगर तुमको मालूम है अपने बच्चों को कैसे अच्छे दान देना है, तो क्यों नहीं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा?
Very quickly.
बड़ी जल्दी ही.
Number 8.
आठवीं बात.
The hindrances to communion with God.
परमेश्वर के साथ संगति में जो रुकावटें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे.
And I will just list them here.
मैं सिर्फ आपको सूची बता देता हूँ उसकी.
You're very familiar with these.
आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं.
First hindrance.
पहली रुकावट.
The cares and concerns and anxieties of this life.
इस जीवन की चिंताएं, परेशानियां या जो कुछ भी आपके पास बोझ हैं वो सब.
Matthew chapter 6.
मत्ती उसका छठा अध्याय.
You know what Jesus said.
आपको मालूम है यीशु क्या कहते हैं यहाँ पे.
Where is that, brother? Down toward the verse 25.
25वां पद.
Very familiar passage.
हम जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से.
Do not be anxious for your life, what you shall eat or drink, or your body, what you be clothed with.
इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना ही अपने देह के लिए क्या पहनेंगे.
What is the solution for anxiety?
जो आपके सामने चिंताएं होती है उसका उसका समाधान क्या होता है?
Think about God's character.
परमेश्वर के चरित्र के बारे में सोचो.
Think about God's faithfulness.
परमेश्वर की विश्वासयोग्यता.
Think about God's providence.
जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध कराया उसके.
Look at the birds of the air.
आकाश के पक्षियों के बारे में.
Look at the flowers of the field.
और मैदानों में जो फूल हैं उनको देखिए.
See God's provision for all these.
देखिए कि कैसे परमेश्वर ने इन सब के लिए उपलब्ध कराया.
We are more valuable than many sparrows.
हम बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा मूल्यवान हैं.
What will we eat?
हम क्या खाएंगे?
Where will we get our money?
हमें कहां से पैसा मिलेगा?
What will happen in the future?
भविष्य में क्या होगा?
What will happen to our family?
हमारे परिवार को क्या होगा?
The worries and cares of this life.
इस जीवन की चिंताएं.
When a man goes to pray,
जब एक आदमी पढ़ने जाता है,
his mind is often distracted.
तो उसका मस्तिष्क अक्सर बटा हुआ होता है.
What's going to happen to the future?
भविष्य में क्या होगा?
I don't have enough money.
मेरे पास पैसा नहीं है.
My body is sick.
मेरा बीमार मेरा शरीर
बीमार है. My ministry is weak.
मेरा मेरी सेवकाई कमजोर है.
There are many distractions.
बहुत सारे हमारे सामने मन बटाने वाली बातें हैं.
We have businesses that distract us.
हमारे पास ऐसे व्यवसाय हैं जो हमें हमारा मन बटाते हैं.
We have real liberties that distract us.
और हमारे पास वास्तविक स्वतंत्रताएं हैं जो हमें हमारे मन को.
This is especially true in America.
विशेष तौर से ये अमेरिका में सही बात है.
Where people have all their games and all their hobbies and all their activities and all their technology.
जहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे उनके खेल हैं और उनके जो जो चीजें उनको पसंद हैं या फिर उनके तकनीकी की चीज.
And this can distract us.
और जो भी ये सारी चीजें हमारे जो अच्छी हो सकती है वो हमें भी हमारा ध्यान बटा सकती
है. That's the first hindrance.
और ये सबसे पहली.
Another hindrance.
दूसरी रुकावट.
The weakness of the flesh.
हमारे शरीर की हमारे देह की कमजोरी.
Galatians 5.
गलतियों से पांचवा अध्याय.
The flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh.
कि जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध आत्मा शरीर के विरुद्ध में इच्छा रखता है.
Luke chapter 22.
लुका उसका 22वां अध्याय.
Jesus said the spirit is willing but the flesh is weak.
यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो चाहती है लेकिन शरीर कमजोर है.
But he said we're to watch and we're to pray.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हमें सावधान रहना है, जागते रहना
है. We have remaining sin.
क्योंकि हमारे अंदर बचा हुआ
पाप है. As I told you yesterday.
जैसे मैंने कल आपको बताया था.
When we watch TV.
जब हम टीवी देखते हैं.
Look at our cell phone.
या हम अपने फोन को देखते हैं.
Or watch sports.
या कोई खेल देखते हैं.
We are very attentive.
तो हम बहुत ध्यान से देखते हैं.
But when we come to spiritual things.
लेकिन जब हम आत्मिक चीजों की ओर आते
हैं. It is difficult to pay attention.
तो हमें ध्यान देना बड़ा मुश्किल होता है.
What is the problem?
समस्या क्या है?
Remaining sin.
क्योंकि हमारे अंदर बचा हुआ पाप है.
The flesh fights against the spirit.
जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में लड़ता है.
This is a hindrance to prayer.
ये हमारे प्रार्थना में रुकावट है.
Many times I come to prayer.
बहुत बार मैं प्रार्थना करने आता हूँ.
My mind is thinking about other things.
मेरा मस्तिष्क दूसरी बातों के बारे में सोच रहा होता है.
And my flesh is weak.
और मेरा शरीर कमजोर होता है.
Or I am tired.
और या फिर मैं थका हुआ होता हूँ.
And I cannot focus.
और मैं ध्यान नहीं दे पाता.
And my mind wanders around.
मेरा दिमाग इधर उधर घूमता
है. And I fall asleep sometimes.
कभी कभी मैं सो भी जाता हूँ.
This is because of the distractions of the world.
ये इसलिए है क्योंकि संसार की जो बातें
and the cause of the weakness of the flesh.
और शरीर की कमजोरी की वजह से.
Number three.
और तीसरी बात.
There's the opposition of the devil.
ये शैतान की ओर से विरोध.
There is spiritual warfare.
ये हमारा आत्मिक युद्ध है.
There are principalities and powers, spiritual forces in the heavenly places.
स्वर्ग स्थानों में आकाश में ये आत्मिक ताकतें हैं विरोधी हैं जो हमारे विरोध में हमसे लड़ रही हैं.
Luke 22.
लुकास का 22 अध्याय.
What did Jesus say to Peter?
यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से?
Satan has demanded to sift you like wheat.
और शैतान ने ये चाहा कि तुमको गेहूं के समान तुमको जांचे.
First Peter.
पहला पतरस.
Your adversary, the devil, roams around as a roaring lion.
तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता फिर रहा है.
Now, if you've walked with God for some time,
अगर आपने परमेश्वर के साथ थोड़ा
you've experienced all of these things.
तो आपने इन सारी चीजों को अनुभव किया है.
The distractions of the world.
इस संसार की चीजें जो आपका ध्यान
The weakness of the flesh.
आपके शरीर की कमजोरी.
The opposition of the devil.
शैतान का विरोध.
He doesn't want you to pray.
वो नहीं चाहता कि आप
He doesn't want you to believe God.
वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर
He doesn't want you to come near to God.
वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के
He doesn't want you to trust God.
वो नहीं चाहता कि आप
He wants you to doubt God. He wants you to doubt God's word. He wants to keep you away from prayer. And so we must watch and pray. Because the spirit is willing, but the flesh is weak.
क्योंकि आत्मा तो चाहती है लेकिन शरीर कमजोर
Because of the distractions of the world.
क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें
Because of the opposition of the devil.
क्योंकि शैतान के विरोध की वजह से
Let me mention one more hindrance.
और एक और रुकावट को मैं बताना चाहता
हूं We often don't think about this.
इसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते हैं
The pressures and demands of the ministry.
हमारे सेवकाई के दबाव और मांगे
Write these verses down.
इन पदों को लिख लीजिए आप
2 Corinthians chapter 4.
दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय.
And chapter 6.
और छठा अध्याय.
And chapter 11.
और ग्यारह अध्याय.
And chapter 12.
बारह अध्याय.
Now what do all those verses talk about?
ये सारे अध्याय किन बातों के बारे में बात करते?
Paul is describing the difficulties of the ministry.
पौलुस यहाँ पे सेवकाई की कठिनाइयों के बारे में
And I encourage you to consistently read those passages.
और मैं आपसे आपको चाहता हूँ कि आप निरंतर इन अध्यायों को पढ़ा कराया करिए।
The ministry of the new covenant is a glorious thing.
नए वाचा की सेवकाई एक बहुत ही अद्भुत बात है।
But we have this treasure in earthen vessels.
लेकिन हमारे पास ये जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में है।
And the vessel is weak.
और ये बर्तन कमजोर है।
And we are surrounded by many pressures.
और हमारे चारों तरफ बहुत सारे दबाव हैं।
The pressures of the ministry.
सेवकाई के दबाव।
Preparing messages.
संदेश को तैयार करना।
Going to see people. Preaching the word of God. These are tremendous pressures.
ये सारे बहुत ही बड़े दबाव हैं.
Look at one passage.
एक पद को देख लिए हमारे साथ.
2 Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों.
And chapter 11 and 12.
दूसरा कुरिन्थियों उसको 11 और 12 पद. 11 अध्याय और 12 अध्याय.
Verses. Look at chapter 11. Verse 23 and following.
उसका 23 पद उसके बाद में.
A very familiar passage.
हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं.
Paul is describing his difficulties.
पौलुस यहाँ पे अपनी मुश्किलों को कवर कर रहा
है. You have read this list many times.
आपने सूची को कई बार पढ़ा है.
Paul knew tremendous persecution.
पौलुस ने बहुत ही बड़े सताव को जाना था.
He had great problems.
उसके सामने बड़ी समस्याएं
थी. He had physical problems.
उसके सामने शारीरिक समस्याएं थी.
He had spiritual problems.
आत्मिक समस्याएं
थी. He had problems in the church. He had problems out in the world.
बाहर दुनिया में समस्याएं.
He had problems in the ocean.
समुद्र में उसके साथ.
He had problems everywhere.
हर जगह उसके पास समस्याएं.
Now notice what he says.
देखिए क्या कहता है वो.
Verse 28.
उसके 28 पद
में. Apart from these outward things, there is the daily pressure of concern for all the churches.
इन बाहरी बातों के अतिरिक्त मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं में चिंता दबाए रहती है.
Paul was concerned about many things.
पौलुस के सामने बहुत सारी चिंताएं थी.
And he had tremendous pressure.
और उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था.
And he had great responsibilities.
और उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां
थी. And he knew many people.
और बहुत सारे लोगों को
And he went to many places.
और बहुत सारी जगह जाता था.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
He didn't allow that to distract him from prayer.
उसने इन सारी बातों को ये अनुमति नहीं दी कि वो प्रार्थना से उसका ध्यान हटा सके.
In the book of Acts we read about the ministry of Paul.
प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पौलुस की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं।
We only read about the points where he's preaching or ministry.
हमने सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में पढ़ा है जहाँ पे वो प्रचार कर रहा है या सेवकाई कर रहा है।
We don't read about all the other times.
लेकिन हम बाकी बातों के बारे में नहीं पढ़ते हैं।
I've been to the city of Ephesus.
मैं इफिसियों के शहर में गया हूँ।
I've been to the place where Paul stood and preached.
मैं उस जगह गया जहाँ पे पौलुस ने खड़े होकर प्रचार किया.
And I've looked at the hills surrounding Ephesus.
और मैंने इफिसस शहर के चारों तरफ जो पहाड़ हैं उनको देखा है.
And they still have a few of the old Roman roads there that the Romans built.
और अभी भी वो पुराने जो रोमी लोगों ने सड़कें बनाई थी वो अभी भी बची हुई हैं.
They're laid stones, big stones about as wide as this aisle.
और जितना चौड़े यहाँ पे जो जगह है उतने ही चौड़े पत्थर है वहाँ पे.
They were built all over the Roman Empire.
और पूरे रोमी साम्राज्य पे इस तरह की सड़कें बनाई गई.
This was the providence of God.
ये परमेश्वर की ओर से उसकी दया में होकर कैसा हुआ.
Paul had good roads.
पौलुस के पास अच्छे रास्ते थे.
Everyone spoke the same language.
सब लोग एक ही भाषा बोलते थे.
This was the providence of God.
ये परमेश्वर की इच्छा में होकर के था.
Alexander the Great.
सिकंदर महान
300 years before.
यीशु मसीह के आने से
300 साल पहले. Had conquered that whole world.
उसने पूरे संसार उस संसार को.
And he gave them all one language.
और उसने उन लोगों को केवल एक ही भाषा दी.
So Paul had good roads.
तो पौलुस के पास अच्छी सड़कें.
They all had the same language.
वो सब एक ही भाषा यूनानी.
And God had even prepared for them a Bible.
और उनके लिए परमेश्वर ने एक वचन भी तैयार कर लिया.
Because all of those Jews outside of Jerusalem could not speak Hebrew.
क्योंकि जो जितने यहूदी लोग यरूशलेम के बाहर थे वो लोग इब्रानी भाषा नहीं बोल सकते.
At the time of Paul, Hebrew was a dead and forgotten language.
पौलुस के समय में इब्रानी भाषा मरी हुई भाषा थी और लोग भूल चुके थे.
Only a few of the priests in Jerusalem knew Hebrew.
केवल कुछ ही याजक लोग जो कि यरूशलेम में थे वही इब्रानी भाषा.
They lost it when they were in exile.
जब वो लोग बाहर बंदीगृह में थे तब वो लोग भूल गए इसको.
And they learned Aramaic.
और फिर उन्होंने अरामी भाषा सीखी.
They didn't know Hebrew.
वो तो इब्रानी भाषा नहीं
जानते. The Jews were scattered all over the world.
क्योंकि यहूदी लोग पूरी दुनिया में फैल गए थे.
But 300 years before Christ came.
लेकिन यीशु मसीह के आने से 300 साल पहले.
God gave them a Bible.
परमेश्वर ने उनको एक वचन बाइबल दिया.
What's the name of that Bible?
उस बाइबल का नाम क्या है?
Septuagint. You have a word for that in Septuagint.
It's the same thing.
What is the Septuagint?
Septuagint. Septuagint kya hai? Haan ji? 70 people? 70 log ne kya kiya?
In Egypt.
Misr desh mein.
Jews.
Yahudi log.
Didn't have the Bible in their own language.
उनके पास अपनी बाइबल उनकी खुद की भाषा में.
They brought some old scrolls from Jerusalem.
लोग यरूशलेम से कुछ पुराने चमर पत्र
लेकर. And they translated it into Greek.
फिर उन्होंने उसको यूनानी भाषा में अनुवाद किया.
And for 300 years.
और 300 साल तक.
That Bible was all over the world.
पूरे दुनिया में ये बाइबल का इस्तेमाल किया जा रहा था.
So when Paul told Timothy, from a little child, you've known the sacred scriptures.
तुम पवित्र वचन को जानते हो.
What Bible was Timothy reading?
किस बाइबल कौन सी बाइबल Timothy पढ़ रहा था उस समय?
He wasn't reading Hebrew.
वो इब्रानी भाषा नहीं पढ़ रहा था.
He didn't know Hebrew.
वो तो इब्रानी भाषा जानता ही नहीं था.
He was half Gentile.
क्योंकि वो आधा गैर अन्य जाति था.
He lived in Asia Minor.
वो छोटे एशिया में रहता था.
God gave roads.
परमेश्वर ने वहाँ पे सड़कें दी.
God gave a language.
परमेश्वर ने एक भाषा यूनानी भाषा.
And God gave a Bible translation.
परमेश्वर ने एक बाइबल अनुवाद करके यूनानी भाषा.
And when I stood at Ephesus.
और जब मैं एफिसियो शहर में.
And I looked at those hills.
फिर मैंने उन पहाड़ों को देखा.
And when I saw those roads.
जब मैंने उन सड़कों को देखा.
They were up and down.
वो ऊपर नीचे जा रही थी.
And I thought about Paul.
मैंने सोचा पौलुस के बारे.
Most of the time he's walking.
बहुत ज्यादा समय वो चलता.
Sometimes he's riding.
कभी कभी वो घोड़े पर चलता.
But for hour after hour he's walking.
लेकिन घंटों के बाद घंटों वो चलता
ही. He's stopping to rest.
वो रुकता था आराम करने के लिए.
We don't read about that in the Bible.
हम नहीं पढ़ते उसके बारे में बाइबल में.
But what was he doing?
जब आराम करता था तो क्या?
He was bowing his knee.
वो अपने घुटने झुकाता था.
He was giving himself to prayer.
वो अपने आप को प्रार्थना में दे रहा था.
He was under tremendous pressure.
क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था.
But he did not allow that to hinder him from praying.
लेकिन उसने उस दबाव को अनुमति नहीं दी कि उसको प्रार्थना में.
Many preachers.
बहुत सारे प्रचारक.
They study.
वो लोग अध्ययन करते.
Go out to preach.
जाते प्रचार करने.
Work hard.
मेहनत करते हैं.
But they neglect prayer.
लेकिन वो प्रार्थना को.
They think this.
वो ये सोचते हैं.
I've got to prepare messages.
मुझे संदेश.
I've got to study. I've got to go preach. I've got to call people. I've got to see about this pastor. And certainly that is our responsibility. But you cannot allow that to squeeze out your time of prayer. The world.
संसार,
the flesh.
आपका शरीर,
the devil.
शैतान,
and even the ministry.
और सेवकाई भी,
can hinder us from prayer.
हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट बन सकते.
But if it's your first priority.
लेकिन अगर यह आपकी पहली प्राथमिकता है.
You will not sacrifice that time.
तो आप वो प्रार्थना के समय का त्याग नहीं करेंगे.
May God help you to continue in prayer.
मैं परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें.
And when I go back to China,
और जब मैं चीन देश वापस जाऊंगा,
I will be praying for you.
मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ.
That God would help you to pray.
परमेश्वर आपकी सहायता करे.
And if you ever think about me,
और अगर आप कभी मेरे बारे में सोचें,
you pray for me.
तो मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए.
That God would help me to pray.
कि परमेश्वर मुझे सहायता करे.
Because if we live in the presence of God,
क्योंकि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में,
if we will make it our first priority,
अगर हम उसको अपनी प्रथम प्राथमिकता बना लें,
when we go back to our churches,
जब अपनी कलीसियाओं वापस जाएंगे,
you need to discipline your time,
तो आपको अपने समय को अनुशासित करना
होगा, rearrange your schedule,
अपने जो समय है उसको ठीक से,
here you're all staying together in the room,
यहाँ पे तो आप सब लोग एक साथ कमरों में रह रहे हैं,
and it's hard to read and pray,
और यहाँ पे पढ़ना और प्रार्थना करना मुश्किल है,
but when you go home,
लेकिन जब आप घर जाएं,
find that secret place,
वो गुप्त स्थान को ढूंढिए,
get on your knees,
अपने घुटनों पे जाइए,
and ask God to help you,
और परमेश्वर से कहिए कि वो आपकी मदद करें,
and worship him,
और उसकी आराधना करिए,
and pray for others,
और दूसरों के लिए प्रार्थना करिए,
and confess your sin,
अपने पापों को अंगीकार
करिए, and ask for help,
और मदद के लिए मांगिए,
and God may come by the Spirit,
और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा
आएगा, and he may strengthen you to pray,
और आपको मदद दृढ़ करेगा कि आप प्रार्थना कर सकें,
you do that for one day,
और आप एक दिन करिए,
then you do it for another day,
फिर दूसरे दिन करिए,
and then you do it for a week,
फिर एक हफ्ते तक,
a month,
एक महीने,
a year,
एक साल तक,
and the rest of your life,
और अपने जीवन के अंतिम समय तक,
no matter how you feel,
चाहे जैसा भी आप अनुभव कर रहे हो या ना कर रहे हो,
and God will help you,
और परमेश्वर आपकी मदद करेगा.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.